Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kaivalya Upanishad, presented by Swami Sri Dharmanandiji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
गीता के प्रारंभ में जो पहले पृष्ठ का भाष्य है, जिसको कहते उपोद्घात भाष्य, उसमें भगवान शंकराचार्य ने बात लिखी है। आप देख लेना, नारायण शब्द की व्युत्पत्ति की है, दो व्युत्पत्ति की है। नरः चिदाभासः जीवः तेषाम् अयनम् आश्रयो नारायण अधिष्ठान चेतन। नर बोल दे चिदाभास को, और उसका जो अयन मतलब आश्रय वह है नारायण, मतलब अधिष्ठान चैतन्य। तो जो अधिष्ठान चैतन्य है वही इस चिदाभास का आश्रय है। जिस प्रकार आकाश में जो सूर्य का प्रतिबिंब है, वह आकाश में सूर्य, आकाश में जो गगन में सूर्य है, और जो पृथ्वी पर जो प्रतिबिंब है हजारों लाखों अरबों की संख्या में, इन सभी का अधिष्ठान एक ही सूर्य है। हालांकि दिखाई देता है हजार अनेक, बार बार देखो तो भी वही दिखाई पड़ेगा उसी के अनुसार, परंतु वास्तव में सभी को पता है एक ही अधिष्ठान है। सूर्यास्त होने के बाद दिखना बंद हो जाता है, या उपाधि नष्ट हो जाए तो भी दिखनी बंद हो जाती है। ऐसे ही नरह कार्य चिदाभासः जीवा, सभी का अयन आश्रय होने से उसको नारायण कहते हैं, जिसको आप ब्रह्म अधिष्ठान चेतन कहते। और शंभो का भी अर्थ है, सम मतलब कल्याण, कल्याणम भवत यस्मात् तत् शंभो, कल्याण सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा है, उसी से उपलब्धि होती, इसीलिए शंभु का भी अर्थ अधिष्ठान चेतन। तो जो भी कुछ कर रहे उसका कनेक्शन संबंध नाता जोड़ देना है किससे, भगवान से। अपने इंद्रियों के व्यापार का, ये हमारी इंद्रियां बड़ी व्यापार करती हैं, ऐसा नहीं समझना कि खाली दुकान पर ही होता है, बल्कि दुकान पर तो कम होता है। दुकान पर तो एक ही विषय का होगा, ग्राहक माल लेने आएगा, पैसा लेंगे देंगे, इतना ही होगा। परंतु घर में बैठे बैठे सारी इंद्रियां व्यापार करती हैं। किसी ने एक शब्द कह दिया, भले अच्छे ढंग से अच्छी भावना से कहा हो, पर व्यापार शुरू हो जाता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आज इनका चेहरा उदास क्यों दिख रहा है, होता है कि नहीं। हम मन से सुनने के बाद शब्दों का व्यापार शुरू कर देते हैं, और ये जो है ना बहुत बड़ी बीमारी है। सबको नहीं होती है, हमको तो खैर नहीं है, इसीलिए कह रहा हूं, नहीं के बराबर है हमारे को, पर बहुत लोगों को बहुत ज्यादा होता है। अपने कई साथियों को देखा, जैसे एक दृष्टांत से समझे, वो महात्मा जी कथा कर रहे थे, एक बूढ़ी माता आई और आते ही क्या बोली, पापी जी महाराज ओम नमो नारायणाय, सब तो बढ़िया है पर खाली पापी लगा दी, इतने बड़े नारायण शब्द वो नहीं सुनाई पड़ा, पर जो पापी संबोधन था, पापी जी महाराज ओम नमो नारायण आए, अब सारे एक दूसरे के मुख को देखने लगे कि हम तो महात्मा जी को बड़ा सिद्ध ज्ञानी मानते थे, ये बुढ़िया सबके बीच में पापी बोल रही, कोई न कोई दाल में काला होना चाहिए। अब महात्मा जी ने भी कहा, धन्यवाद आ रहा कुतरिया, कुतरिया कर दिया, बोले बैठ जा। अब बाद में बैठ गए बूढ़ी अम्मा, अब सभी का ध्यान चला गया उधर ही, इतना बढ़िया प्रवचन हो रहा ना, उधर व्यापार बंद, कान से सुनने महात्मा जी बोल रहे, पर एक घंटे तक व्यापार की भाई, बूढ़ी माँ ने पापी क्यों कहा, इन्होंने कुतरिया क्यों कहा, कुछ बात है। देखो व्यापार शुरू हो गया ना मन से, प्रवचन समाप्त नहीं हुआ, एक भले मानस जो बड़े धाकड़ थे खड़े होकर बोले, महाराज जी बुरा न माने तो एक बात पूछूं। बात मैंने कहा, पूछो भाई। ये माता जी आपको पापी जी ओम नमो नारायण क्यों कही, महात्मा जी ने कहा इन्हीं से पूछो जाकर। तो मां ने जो बात कही वह बहुत अच्छी है। मां ने कहा कि भाई देखो व्याकरण में दो धातु पापाने पारक्षणे, पापाने से पिबती बनता है दुग्धम पिबती सपीतिम पिबती, सपीति मतलब चाय, सपीतिम पिबती तक्रम पिबती, और पारक्षणे से पाती बनता है पाती विश्वम विश्वम भरो। तो इस महापुरुष ने शास्त्रों का पान करके आत्मा की रक्षा कर ली, इसलिए हमने पापी कहा। तो कितना खराब शब्द पापी है, पर सात्विक चित्त वाले ने उसका व्यापार कैसा किया। जैसे व्यापारी बहुत माहिर होते हैं ना, वो घटिया माल को पैकिंग सैकिंग करके नाम बदल करके जो एक रुपया को उसको सौ भी नहीं हजार रुपये बेच देते। ऐसे पापी शब्द कोई बढ़िया नहीं है, वह पापी शब्द का बढ़िया पैकिंग किया, उसको ऐसा सजाया धजाया वित्पत्ति किया कि पापी का अर्थ हो गया ज्ञानी, अपरोक्ष ज्ञानी, जिसने परोक्ष ज्ञान का श्रवण पूट से पान किया और अपने अंतःकरण में हजम कर लिया रख लिया, उसको कहा पापी। ये व्यापार बढ़िया है कि हम लोगों का व्यापार। और आपको कोई पापी बोले तो सीधा जूता उठाएंगे, बोलेंगे मारूंगा सर पर चार जूते। देखो ये भी व्यापार है पापी का। एक बेचारे ने भूल से कह दिया, जुबान फिसल गई मान लो, और आप उसको चार जूते बजा देते, कितना अनर्थ। पर एक यह भी व्यापार कि पाप आने पर रक्षण से पापी कार्तिक ज्ञानी। इधर पूछे कि कुतरिया क्यों कही, तो माता जी ने कहा कि महात्मा इसे पूछ लो उन्होंने कुतरिया क्यों कही। महात्मा ने कहा देखो कुकार्ते कुलम अत्रि संप्लवन तारणियों से तरिया बनता है। इस अंबा ने अपने कुल को सनमार्ग में लगाकर तार दिया, इसलिए हमने क्या कहा कुतरिया। शब्द वही है ना कुतरिया पापी, पर कितना बढ़िया शब्दों का व्यापार किया। तो हम लोग भी चाहे जैसे ही माहौल में रहें, कितना भी माहौल खतरनाक हो, उस माहौल में भी शब्दों का हम लोग बढ़िया से व्यापार करें ना, तो फिर तो दिवाली दिवाली, कहीं अंधेरा नहीं रहेगा। पर शब्दों का व्यापार नहीं करेंगे तो कहीं अंधेरा कहीं रोशनी होगी। इसीलिए कहा आहार शुद्धो सत्य शुद्धि। वास्तव में देखा जाए ना कहीं कुछ भी बुरा नहीं होता। एक महात्मा कहते थे कि जैसी जैसी जिसकी वृत्ति वही उसको सुहार, और दोष रहे दृष्टि में सच्ची बात यही है। दोष केवल अपने दृष्टि, दृष्टि करते भावना, दोष हमेशा हमारे भावना में, किस व्यवहार को किस शब्द को किस नजारा को हम किस भावना से देखते हैं। यदि भावना शुद्ध है तो वही हमारे मन को प्रसन्न करती है, और भावना मलिन है राशि तामसी है अच्छा व्यवहार भी हमें बुरा लगता। अब मानो मन में तमोगुण है, चार लोग बैठकर आपस में मजाक कर रहे हैं, जरूर दुखी हो जाएगा। एक हमारे महात्मा थे, यहाँ कई बार आए से नाम नहीं लूंगा, कैलाश में अपने पढ़ाते थे नहीं से, तो उनका अक्सर स्वभाव था कि दो चार पांच महात्मा जब बैठ के बात करे हंसे ना तो बस उनके मन में इतनी पीड़ा इतना क्रोध कि हमें आकर बोलते थे कि देखो लग रहा वो हमारी चर्चा कर रहे हैं, हमारी मजाक कर रहे हैं, हमारी कुछ बातें हो रही। तो इसको बोलते शक की बीमारी। तो उसका दोष नहीं, वो तो अपने स्वभाव से विनोद कर रहे मजाक कर रहे कुछ कर रहे, पर क्या होता है कि हम देख करके राशि तामसी चित होने से बड़े दुखी हो जाते बिना कारण के। जरूर कुछ हमारी बात को लेके हंस रहे हैं मजाक कर रहे हैं, इसको हिंदी में शक की बीमारी कहते हैं। तो देखो भावना हमारी खराब हुई, उनके यहाँ दोष नहीं, वो तो आपस में साथ की चर्चा कर रहे या सत्संग की चर्चा कर रहे उसको लेकर विनोद कर रहे, पर हमारी भावना मलिन होने से हमने क्या लगा लिया कि कोई ना कोई हमारी कमी को उठा रहे होंगे। तो भावना शुद्ध दृष्टि शुद्ध तो कहीं पर भी संसार में कोई दोष होता ही नहीं। इसलिए अंतिम में शुद्ध सत्वा शब्द का प्रयोग किया, दुख पहले वेदांत विज्ञान कहा, सुनिश्चितार्था कहा, फिर संन्यास होगा, यतः और अंत में कहा शुद्ध सत्व। चाहे जैसे भी हो, यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया तो निश्चित ही उस परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। और फिर इसके बाद क्या होता है कि संसार के बंधन से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता। संसार रूपी कारागृह में हम लोग जो है ना पड़े हुए हैं। ऐसा कारागृह है कि हम लोग इस कारागृह से निकलना भी नहीं चाहते। कारागृह में एक जो है ना कैदी मिला, अभी पिछले साल कुंभ की बात है, तो वो सुनाने लगा कि महाराज में 12 बजे तक जेल में था। वो पांडे थे जा, तो उनका नाम भी लोगों ने रख दिया घंटा चोर पांडे। इसलिए नाम पड़ गया ना कि मंदिर के घंटा को उन्होंने चुरा लिया, अब पकड़ कर जेल ही बंद हो गए। पर जेल में इतनी सुविधा कि जब उनको जेल में फरमान आया छोड़ने का तो बेचारे छिप गए। बहुत परेशान हुए उनको ढूंढने में। पूछा, भाई आज तुमको छुट्टी होना, जेल से क्यों छिप रहे? बोले, हमको जेल में बहुत बढ़िया है। बोले, क्यों? यहाँ कोई चिंता नहीं, न परिवार चलाने की चिंता, न घर की, न खेत की, न व्यापार की। आराम से भोजन मिल जाता, नाश्ता पानी मिल जाता, खूब गप सड़ाबा करते सोते। अब बाहर जाएंगे तो सारी जिम्मेदारी, इसलिए हमको और कुछ दिन यहाँ रहने दो। अब देखो है जेल, पर प्रारंभ में जेल में पीड़ा दुख महसूस होता है, बाद में उसको बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग भी ऐसे ही हैं। वो घंटा चोर जो पाले थे ना, उनकी तरह से इस संसार रूपी जेल से कोई कहे छोड़ो त्यागो तो कहते नहीं, बहुत बढ़िया है, अभी रहने दो। वास्तव में देखो तो संसार केवल कारागृह है, और हर तरह का कारागृह है। जेल में तो कम से कम कोई चिंता नहीं होती, यहां तो 100 चिंता। सोने के पहले चिंता कल की कि कल जो है क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और जगने के बाद भी चिंता, मतलब चिंता ही चिंता। वो कहते हैं एक राजा थी, बड़ी कंजूस, महाकंजूस, इतने कंजूस की कल्पना नहीं कर सकते। तो किसी ने कहा कि यदि इससे कोई नाम ले ले तो हम उसको महावीर पदवी देंगे। एक जो है ना विदूषक था, विदूषक बोलते जो नर्तन करने का मालिक होता, संस्कृत विदूषक बोलते, हाँ जोकर, हिंदी में जोकर बोलते। तो जोकर ने कहा कि मैं जो है राजा से नाम ले सकता हूं। वह जोकर राज दरबार में आया, बोला महाराज मैं मुफ्त में रात बराब को अजीबो गरीब जो है नाटक दिखाऊंगा। राजा बड़ा खुश हो गया, बिना किसी शुल्क के सारी प्रजा ही नाटक देखने लगे। एक पर बीता, दो पर, तीन पर, राजा बस कोई चिंता नहीं, इतना हाव भाव भंगिमा दिखाई नर्तकी, और विदूषक भी खूब हाव भाव दिखाया, जरा ही प्रसन्नता नहीं। अब तीसरे पर आते आते वो नर्तकी बहुत दुखी हो गई, बोली कि मैं तो हार गई नाचते नाचते, जरा भी इनाम नहीं, हंसी नहीं, कुछ नहीं, जल की तरह बैठा रहा। जब राजा वैसा तो प्रजा भी, और आसपास की रानी और राजकुमार सब वैसे ही, अंत में दुखी हो गई। अब वो जो है ना जरा जो है ना अपने रंग में भंग, मल्ल की जैसे तैसे नाचने लगी बिना ताल के। तो विदूषक को रहा नहीं गया, बोल ताल देने वाले ने कहा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, क्यों रंग में भंग करे कूल कलंक लग जाए। बहुत गई थोड़ी रही, अब चौथा पर यह भी चली जाएगी। इस रंग में भंग, भंगल नाश, इसको ताल को क्यों तू भंग कर रही, कूल में कलंक लग जाएगा। वो समझ गई सारा, बढ़िया से नाचने लगी संभल करके। इसको सुनते ही जो वहां पुरोहित थे ना बैठे, जिसको राजगुरु कहते हैं, पुराने जमाने में राजाओं के राजगुरु हुआ करते थे पुरोहित, उन्होंने इसको सुनते ही बड़ा सुंदर अपना दुशाला, गले का हार भेंट किया। इसके बाद तो सिलसिला लग गया। राजकुमार ने भी अपना मोतिहार भेंट किया, राजकुमार ने भेंट किया सबने, राजा को रहा नहीं गया। राजा उठ खड़ा हुआ, राजा ने कहा बताओ इतना मूल्य ये हार क्यों तुमने भेंट किया? राजकुमार से पूछा। राजकुमार ने कहा कि इसलिए भेंट किया कि मैं सोच रहा था जरा सा झपकी लगे कि बस आपका तमाम काम करके मैं राजा बन जाऊं। तो इसने जो सुनाई ना कि बहुत गई आधी गई वो थोड़ी रे थोड़ी भी जाए, अब क्यों कुल में कलंग लगा है? तो हमारी चेतना जग गई, आज निकल तो आप हमें ही राजा बनाएंगे, दूसरा कोई तो है नहीं। मैं सोच रहा था कि पिताजी बूढ़े हो गए, अभी तक हमको राजगद्दी नहीं दे रहे, मेरी जवानी बीत रही, तो मैं अधैर्य से आपकी हत्या करने जा रहा था, इससे मेरी चेतना जग गई। राजा बड़ा खुश हुआ। राजकुमार ने कहे कि मैं भी उब गई थी, मेरी जवानी बीत रही थी, मैं सोच रही थी दीवान के लड़के के साथ मैं भाग जाऊंगी। हमने कहा कुल कलंग लग जाएगा, इसलिए हमने इनाम दिया। राजपुरोहित ने बड़ी अच्छी बात बताई, उन्होंने कहा कि मैं भी देखो 60 वर्ष का हो गया, पर आप राजघराने वालों के साथ रहते रहते ना मेरे मन में वासना हुई कि मैं भी क्यों न शादीशुदा करके बढ़िया से राजा की तरह ठाट बाचे रहूं। इसलिए हमने कहा कि बहुत चली गई 60 वर्ष, और 10-20 वर्ष के साथ क्यों कलंक लगाना है? तो हम लोग भी यही करते, अपनी आयु धीरे धीरे खिसक रही। यदि हम एकांत में बैठकर विचार करते हैं, जरा विचार करके देखना 2-4 घंटे स्वयं अंदर से चेतना जगेगी, कितनी उम्र बातों में ही बीत गई। यदि हम लोग जरा भी भगवान का भजन करते तो तत्काल उस परमात्मा की अनुभूति हो जाती, परंतु आदमी वासना कामना में बिता दिया, जो गई सो गई, अब जो बची है ना उसको संभालने का, उसको हाथ से नहीं निकलने देने का, यही है परामृतात् का अर्थ। मतलब मौत के पूर्व क्षण, परामृतात् का अर्थ मौत के आखिरी क्षण। गीता में भगवान ने कहा है शक्नोत्य सोढ़ुम प्राग शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेग सयुक्त स सुखी नर। यदि शरीर छूटने के पूर्व पूर्व क्षण, कोई समय सीमा नहीं है कि 50 वर्ष 60 वर्ष 20 वर्ष 10 वर्ष, अवस्था की सीमा नहीं, शरीर छूटने के पूर्व क्षण भी यदि हमने वासना कामना क्रोध पर विजय पा लिया, सबसे खतरनाक जीवन में क्रोध होता है। क्रोध, क्रोध क्या है पता है ना? क्रोध अग्नि का स्वरूप, अग्नि वाग भूत्वा मुखे प्राविशत, श्रुति वाक्य है। अग्नि जो है ना वाणी बनकर मुख में प्रवेश कर गई, तो वाणी बनकर मुख में प्रवेश कर गई, जब आप किसी को कड़वा बोलते हैं जोर से तो मानो अग्नि सवार होकर आग लग जाता, उसका सुनने वाले का दिल जल जाता। ये जो क्रोध है, ऐसे लोभ है, मोह है, मद अहंकार है, इन सब पर विजय पाना, मतलब इन सब को शरीर छूटने के पहले पहले भी हमने बस में कर लिया, अभी हम लोग इनके गुलाम हैं। भले ही हम अपने को स्वतंत्र मानते हो पर स्वतंत्र नहीं, ये जीवात्मा काम क्रोध मद लोभ अहंकार का गुलाम, इधर न चाहते उधर जाते हैं। पर परामृतात् का अर्थ है कि हमेशा के लिए सिर्फ परे हो गया, परे मतलब कि ऊपर उठ गया, इससे अलग हो गया। तो अमृतात् अमृत को उपलब्ध हो जाता है, विपरिमुच्यंती संसार विघ्न बाधा से छुटकारा मिल जाता है। और इसको तो हमें ही करना पड़ेगा, चाहे आज करें या हजारों वर्ष बाद करें। अंतःकरण में 3 दोष होते, मल विक्षेप आवरण, ये 3 दोषों के कारण से जीवात्मा इष्ट मार्ग की तरफ प्रवृत्त नहीं हो रहा, अनिष्ट को छोड़ नहीं पा रहा। मल विक्षेप आवरण। मल दोष की निवृत्ति तो केवल निष्काम कर्म से होती है, निष्काम कर्म से भी आत्मा की अनुभूति हो जाती। जहां सत्संग चलता था वहां एक चाय पानी वाला दुकानदार था, हर दिन सुनता, सुनते सुनते 50 वर्ष बीत गए। उसी महात्मा से कहा, महाराज सुनते सुनते 50 वर्ष बीत गए, मुझे अभी तक आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं हुई। महात्मा ने एक ही शब्द कहा कि तू निष्काम कर्म नहीं करता है, कभी निष्काम कर्म कर, तब देखना आत्मा अनुभूति होगी। संयोग से एक बहुत ही दुखी गरीब में भूख प्यास से मारा आदमी आया और वही मूर्छित होकर गिर पड़ा। गर्मी का दिन, तुरंत उस चाय वाले ने उसको पानी पिलाया, पंखा झला, आराम दिया। थोड़ी देर में चेतना आई, उसके रोम रोम से मंगल कामना की ध्वनि निकलने लगी। उसी रोज कहते हैं चाय वाले के मन में अत्यंत प्रसन्नता आत्मानुभूति हो गई। इसको निष्काम कर्म कहते, बिना कोई कामना के यह मेरा प्रत्युपकार करेगा। तो निष्काम कर्म से मल की निवृत्ति और उपासना से विक्षेप दूर। जब आप वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन करते हैं तो आवरण भंग, आवरण मल अविद्या का जो आवरण अनादि काल से है, इसके नष्ट होते ही यह जीव ही शिव बन जाता। शिव तो है ही, शिवत्व को उपलब्ध हो जाता। अभी हम लोग अपने आप को 3.5 हाथ वाला, जन्मने वाला, मरने वाला ऐसा मानकर चल रहे, पर जैसे ही हम यह निश्चय कर लेंगे, वेदांत विज्ञान से निश्चय हो जाएगा। देखो, दुनिया के विज्ञान से निश्चय है कि हम कर्ता भोक्ता हैं, अमुक के पुत्र, अमुक के पिता, अमुक के भाई, इतना ही निश्चय है, हमारा यह कर्तव्य है। परंतु वेदांत विज्ञान से निश्चय होता है कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं चैतन्य हूं, इस संसार केवल काम चलाऊं व्यवहारिक है। जैसे यह निश्चय होता वैसे आवरण भंग। जब कोई बच्चा पैदा होता है बिल्कुल अवधूत सन्यासी होता है, दिगंबर, चाहे किसी मजहब का क्यों न हो, और जब शरीर छोड़ता तो भी अवधूत संसार में जलाते हैं। ये बीच में जो है ना पर्दा आ गया, हिंदू मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, इसमें ही बहुत से जाति प्रजातियां, ये जितने भी आवरण है ना, ये सारे आवरण को जब ज्ञान से भंग, कैसे भंग होगा कि वेदांत विज्ञान का निश्चय हो जाएगा। क्या निश्चय करना कि मैं ब्रह्म है, नहीं 7 भी कर सकते, एक एक भी कर सकते, मल विक्षेप आवरण। जब वेदांत का निश्चय हो जाएगा तो हमेशा के लिए परिमुच्यन्ति मुक्त हो जाएंगे। अब आगे गाड़ी चलेगी, जैसा आप चाह रहे वैसे 5-5 श्लोक, अभी तक ये मंत्र था, आगे इसी का व्याख्यान है। जो 4 थे ना, 4 मंत्र, चारों का 24 मंत्रों में विश्लेषण किया, वर्णन किया है, उसको भी 4 दिन में कर लेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।